हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। झलक की ये बेपरवाह अदा देखकर आदित्य मन ही मन बोला, पता नहीं कितनी खड़ूस है, लेकिन इसके यही खड़ूसपन मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने बाइक स्टार्ट कर दी। जल्द ही आदित्य ने बाइक की स्पीड पूरी तरह से बढ़ा दी थी। जैसे ही उसने अचानक ब्रेक लगाया, बाइक हल्का सा झटका खा गई। दरअसल आदित्य ने जानबूझकर बाइक थोड़ी तेज चलाई थी। झलक लगभग गिरने ही वाली थी, लेकिन उसने तुरंत ही आदित्य की कमर को कसकर पकड़ लिया। झलक को समझ नहीं आया कि आदित्य क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब क्योंकि वो उसे मजबूती से पकड़ चुकी थी, उसने पकड़ ढीली नहीं की। वो आदित्य को धीरे चलाने के लिए भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो खुद जल्द से जल्द साइड पर पहुंचकर उन लोगों को सबक सिखाना चाहती थी। उधर आदित्य के पूरे शरीर में जैसे झुनझुनी सी दौड़ गई। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश कहीं खो न दे। वो अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा था। झलक के इतने करीब होने पर उसे अलग ही तरह का एहसास हो रहा था। उसके भीतर जैसे कुछ बदल रहा था, लेकिन फिलहाल उसने खुद को संभाला और फास्ट से फास्ट ड्राइव करता रहा। रात का वक्त था और सड़क लगभग खाली थी, कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिला, इसीलिए केवल 40 मिनट के अंदर ही उसने साइट के बाहर बाइक रोक दी। झलक तुरंत उतरी और बिना एक पल गंवाए फैक्ट्री के अंदर चली गई, जिसे उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत प्रॉफिट यूनिट में कन्वर्ट किया था। अंदर जाकर उसने देखा कि वे तीनों वर्कर अभी भी बेफिक्र बैठे बातें कर रहे थे और शराब पी रहे थे। ये देखकर झलक का पारा पूरी तरह चढ़ गया। जैसे ही उन्होंने अपने मालिक को अचानक सामने खड़ा देखा, वो हक्का बक्का रह गए। उन्होंने घबराकर दारू की बोतलें छुपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। झलक गुस्से में उनके पास गई और बिना देर किए एक एक करके उनके गाल पर तमाचे जड़ दिए। सख्त आवाज में बोली, मुझे सिर्फ काम करने वाले लोग चाहिए, इस तरह टाइम वेस्ट करने और जगह बर्बाद करने वाले लोग नहीं। आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई काम की जगह पर बैठकर शराब पीने की? शायद तुम भूल गए हो कि यह प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और तुम लोगों ने उसी का मजाक बना दिया। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, वो और सख्त लहजे में बोली। फटाफट यहाँ से निकल जाओ, मुझे सिर्फ हार्ड वर्क कर चाहिए, तुम जैसे आलसी और अय्याशी करने वाले लोग नहीं जो काम की जगह को छुट्टी समझते हो। तुम्हारी सैलरी तुम्हारे घर भिजवा दी जाएगी, अब तुरंत यहाँ से दफा हो जाओ। तीनों वर्कर सिर झुकाकर वहां से निकल गए। झलक ने बाकी टीम की ओर मुड़कर कहा, जल्दी काम खत्म करो, तुम सबको मुंह मांगी सैलरी यूं ही नहीं दी जाती कि यहाँ बैठकर टाइम पास करो। मुझे हर काम ए टू जेड परफेक्ट चाहिए और जो तीन वर्कर गए हैं उनकी जगह मैं कल नए लोग भेज दूंगी। अगर किसी ने भी लापरवाही की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसकी सख्त आवाज सुनकर सभी लोग तुरंत अपने अपने काम में जुट गए। आदित्य ये सब चुपचाप खड़ा देख रहा था। झलक का ये रूप देखकर वो एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन आंखों में जिम्मेदारी की चमक भी थी। कुछ ही मिनटों में झलक ने पूरा माहौल बदल दिया। उसने 5 मिनट के अंदर सब कुछ कंट्रोल में कर दिया था। अब वो मुड़ी और बाहर की ओर बढ़ी। आदित्य भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जाते जाते उसने बाकी स्टाफ को सख्त नजरों से काम पर ध्यान देने की हिदायत दी और फिर बाहर आ गया। बाइक के पास पहुंचते ही आदित्य ने देखा कि झलक ड्राइविंग सीट पर बैठ चुकी है और बाइक स्टार्ट करने की तैयारी में है। वो चौंक गया, जल्दी से उसके पास आया और बोला, मिस मल्होत्रा, आप क्या कर रही हैं? आपके घुटनों और कोहनी में चोट लगी है, आप इस हालत में बाइक कैसे चलाएंगी? मुझे नहीं लगता आप ठीक से ड्राइव कर पाएंगी, प्लीज आप पीछे बैठ जाइए, मैं चला लूंगा। आप क्यों खुद को परेशान कर रही हैं? आदित्य की आवाज में साफ चिंता थी, लेकिन झलक के चेहरे पर वही सख्त और आत्मविश्वासी भाव कायम थे। आदित्य ने जितना हो सकता था उतनी सॉफ्ट और सावधानी भरी आवाज में बात कही थी। उसे इस बात का डर भी था कि न जाने झलक को उसकी कौन सी बात बुरी लग जाए और वो उसे उल्टा सीधा सुना दे, इसीलिए वो हर शब्द सोच समझ कर बोल रहा था। अगर इस वक्त उसके घर का कोई सदस्य उसे इस तरह झलक से इत्मीनान और नरमी से बात करते देख लेता तो पक्का उसकी टांग खींचता, क्योंकि आदित्य का ये व्यवहार बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। फिलहाल झलक ने गहरी नजरों से आदित्य को देखा और ठंडे आत्मविश्वासी लहजे में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर राणा, उस वक्त जख्म ताजा थे इसीलिए दर्द ज्यादा था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, आप पीछे बैठ जाइए, डोंट वरी, आप मेरे साथ सेफ हैं। जैसे ही उसने दोबारा कहा आप मेरे साथ सेफ हैं, आदित्य की आंखें हल्की सी फैल गई। वो मन ही मन सोचने लगा, आखिर ये लड़की मुझे समझती क्या है, हर बार यही क्यों कहती रहती है कि मैं उसके साथ सेफ हूँ, मुझे किस बात का खतरा है इससे, आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में। उधर रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। ऊपर से दादाजी के लगातार फोन और मैसेज आ रहे थे। घर पर पहले ही मेहमान पहुंच चुके थे। झलक को वहां ना पाकर अभय, कदीर और बाकी सबका मूड खराब हो गया था। खासकर अभय तो वहां सिर्फ झलक से मिलने के लिए आया था। उसके ना होने से उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इसीलिए उसने दादाजी से कह दिया था कि वो अपने दोस्त से कहें वो अपने पोते को फोन करके जल्दी बुला लें। आदित्य के फोन पर लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे, लेकिन उसने सिर्फ एक छोटा सा रिप्लाई किया, हम आ रहे हैं। इसके अलावा ना उसने किसी का कॉल उठाया ना कोई और जवाब दिया। अनामिका को भी वही मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। बाइक पर बैठने से पहले उसने एक नजर आसमान की ओर उठाई और फिर चुपचाप पीछे जाकर बैठ गया। झलक थोड़ी चौंकी, उसने पूछा, आपने ऊपर आसमान की ओर देखकर क्या कहा? भले ही आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन आपके चेहरे से साफ लग रहा था कि आप मन ही मन कुछ कह रहे थे, सब ठीक है ना मिस्टर राणा? आदित्य ने हल्की कड़क आवाज बनाते हुए कहा, मैं पहली बार किसी लड़की के पीछे बैठ रहा हूँ, इसीलिए भगवान जी से कह रहा था कि मेरा ध्यान रखना, मुझे संभाल लेना और घर सही सलामत पहुंचा देना। ये सुनते ही झलक की भौहें तन गईं। वो तुरंत बाइक से उतर गई और बोली, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप किसी और गाड़ी से जा सकते हैं, यहाँ इतनी गाड़ियां खड़ी हैं। मुझे पूरा यकीन है कोई भी वर्कर आपको अपनी गाड़ी देने से मना नहीं करेगा। और वैसे भी इस वक्त दादाजी के साथ कबीर और आपका कजिन भाई मेंशन में है। उनका मैसेज मुझे उसी वक्त आ गया था जब आप वर्कर्स को डांट रहे थे। अगर आपको मेरे साथ असुरक्षित महसूस हो रहा है तो मैं अकेले भी जा सकती हूँ। आदित्य ने नाटकीय अंदाज में गहरी सांस ली और बोला, अरे नहीं, चलिए साथ ही चलते हैं। किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। अगर जीना लिखा होगा तो जी लूंगा, नहीं तो। उसकी इस तरह की बात सुनकर झलक का पारा फिर चढ़ गया। वो बहुत कुछ सुनाना चाहती थी लेकिन खुद को रोक लिया। उसने तेजी से हेलमेट पहना, आदित्य को पीछे बैठने का इशारा किया और झटके से बाइक स्टार्ट कर दी। इस बार उसने इतनी तेज स्पीड पकड़ी कि आदित्य भी चौंक गया। वो मन ही मन बोला, मुझे इसे चढ़ाना नहीं चाहिए था, लगता है सच में नाराज हो गई है, कहीं सच में ऊपर न पहुंचा दे। पहले तो उसने सिर्फ सीट पकड़कर खुद को संभाला, लेकिन जैसे ही झलक ने स्पीड ब्रेकर पर भी बिना रफ्तार कम किए बाइक दौड़ा दी, आदित्य घबरा गया और तुरंत पीछे से झलक को कसकर पकड़ लिया। झलक के माथे पर बल पड़ गए। आदित्य ने उसकी कमर को पकड़ते हुए धीरे से अपना सिर उसकी पीठ पर टिका दिया और बोला, प्लीज थोड़ा धीरे चलाइए, मुझे सच में डर लग रहा है, प्लीज। झलक को उसकी ये हरकत बेहद अजीब लगी। उसने सोचा, इतना बड़ा बिजनेसमैन और इतनी सी स्पीड से डर रहा है, ये बच्चा है क्या?
लेकिन उसने उसे खुद से अलग भी नहीं किया, ना ही उसकी पकड़ हटाई। वो बस चुपचाप तेज रफ्तार से बाइक चलाती रही। उधर आदित्य की दिल की धड़कनें किसी और ही वजह से तेज हो रही थी। झलक को इस तरह करीब महसूस करते ही उसके भीतर अजीब सी हलचल होने लगी थी। उसे लग रहा था जैसे ये सफर कभी खत्म न हो, जैसे वे दोनों यूं ही साथ चलते रहें। उसके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। झलक के शरीर से आती भीनी सी खुशबू उसे पूरी तरह मदहोश कर रही थी। इस वक्त ना उसे सड़क दिख रही थी, ना गाड़ियां, ना आसपास की दुनिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस पतली सी कमर पर था जिसे उसने कसकर थाम रखा था, और उस एहसास पर जो उसके दिल की धड़कनों को बेकाबू कर रहा था।